चौबीसवां अध्याय तेरहवें पद से। देखो, उसी दिन उनमें से दो व्यक्ति इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर था। वे इन सब घटनाओं के विषय में बातें करते जा रहे थे। ऐसा हुआ कि जब वे परस्पर बातें तथा विचार विमर्श कर रहे थे, तो यीशु स्वयं वहां आकर उनके साथ चलने लगा, परंतु उसे पहचानने को उनकी आंखें बंद कर दी गई थीं। उसने उनसे कहा, तुम चलते हुए परस्पर ये सब क्या बातें कर रहे हो? और वे उदास होकर खड़े रह गए। उनमें से एक ने, जिसका नाम क्लियोपास था, उसे उत्तर दिया, क्या तू ही अकेला ऐसा व्यक्ति यरूशलेम में आया हुआ है कि इन सब बातों से जो इन दिनों यहां हुई अनजान है? उसने उनसे कहा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब मनुष्यों की दृष्टि में कार्य और वचन में सामर्थी नबी था, और हमारे मुख्य याजकों और अधिकारियों ने उसे किस प्रकार पकड़वाकर मृत्यु दंड के योग ठहराया और उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हम तो यह आशा कर रहे थे कि वही इसराइल को छुड़ाने वाला व्यक्ति है। वास्तव में इन सब बातों की अपेक्षा इन घटनाओं को घटित हुए आज तीसरा दिन हो चुका है। परंतु हमारे साथ की कुछ स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है। जब वे प्रातःकाल तड़के कब्र पर गईं और उसके शव को नहीं पाया, तो यह कहते हुए आईं कि हमने स्वर्गदूतों का भी दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। जो हमारे साथ थे उनमें से कुछ कब्र पर गए और इस बात को जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उन्होंने उसे नहीं देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो बातें कहीं उन सब पर विश्वास करने में मति मंद लोगों, क्या मसीह के लिए यह आवश्यक न था कि यह सब दुख उठाए और अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से प्रारंभ करके सब नबियों और समस्त पवित्र शास्त्र में से अपने संबंध की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। जब वे उस गांव के निकट पहुंचे जहां जा रहे थे, तो उसने ऐसा दिखाया मानो कि आगे बढ़ जाना चाहता हो। उन्होंने आग्रह करके कहा, हमारे साथ ठहर जा, क्योंकि संध्या हो रही है और दिन लगभग ढल चुका है। वह उनके साथ ठहरने के लिए भीतर गया। तब ऐसा हुआ कि जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद दिया और तोड़कर उन्हें देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, पर वह उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। उन्होंने एक दूसरे से कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें कर रहा था और हमें पवित्र शास्त्र का अर्थ समझा रहा था, तो क्या हमारे हृदय उत्तेजित नहीं हो रहे थे? उसी घड़ी वे उठकर यरूशलेम को लौट गए और ग्यारहों तथा उनके साथियों को एकत्रित पाकर उन्होंने कहा, प्रभु वास्तव में जी उठा है और शमाउन को दिखाई दिया है। और वे मार्ग के अपने अनुभवों को और यह कि रोटी तोड़ते समय उनके द्वारा वह कैसे पहचाना गया था बताने लगे। जब वे ये बातें बता ही रहे थे, वह स्वयं उनके मध्य आकर खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे चौंक उठे तथा डर गए। उन्होंने सोचा कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारे मनों में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पैरों को देखो कि स्वयं मैं ही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि भूत के मांस और हड्डियां नहीं होती जैसा कि तुम मुझ में देखते हो। जब वह यह कह चुका, तो उसने अपने हाथ और पैर उन्हें दिखाए। जब वे आनंद के मारे अब भी विश्वास न कर सके, और आश्चर्यचकित हो रहे थे, तो उसने उनसे कहा, क्या तुम्हारे पास यहां कुछ खाने को है? तब उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया और उसने उसे लेकर उनके देखते हुए खाया। तब उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थीं, कि उन सब बातों का जो मूसा की व्यवस्था में, नबियों तथा भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी गई थीं, पूरा होना अनिवार्य है। उसने उनकी बुद्धि खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र को समझें और उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से प्रारंभ करके सब जातियों में उसके नाम से पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का प्रचार किया जाएगा। तुम इन सब बातों के साक्षी हो। देखो, मैं तुम पर अपने पिता की प्रतिज्ञा को भेजूंगा, परंतु जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ से परिपूर्ण न हो जाओ, इसी नगर में ठहरे रहना। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और उसने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। जबकि वह उन्हें आशीष दे रहा था, तो वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब उन्होंने उसे प्रणाम किया और वे बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौट आए और लगातार मंदिर में जाकर परमेश्वर की स्तुति करते रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला अध्याय। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न न हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है, पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक मनुष्य आया जिसका नाम यूहन्ना था। वह इसलिए आया कि उस ज्योति का गवाह बने कि सब उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं तो वह ज्योति न था, परंतु इसलिए आया कि उस ज्योति की साक्षी दे। वह सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे न पहचाना। वह अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में साक्षी दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, वह जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे आगे है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने पाया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई तो यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर इकलौता जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना की साक्षी यह है, जब यहूदियों ने उसके पास यरूशलेम से याजकों और लेवियों को पूछने भेजा, तू कौन है, तो उसने मान लिया और अस्वीकार नहीं किया, वरन मान ही लिया, मैं मसीह नहीं हूं। तब उन्होंने उसे पूछा, तो फिर क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। क्या तू वह नबी है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर तू है कौन कि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे सकें? तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज हूं, प्रभु का मार्ग सीधा करो, जैसा कि यशायाह नबी ने कहा था। ये तो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। तब उन्होंने उससे पूछा, जब तू ना तो मसीह है, ना एलिया और ना वह नबी, तब तू बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते हो। यह वही है जो मेरे पश्चात आने वाला है और जिसकी जूती का बंध खोलने के योग्य मैं नहीं हूं। ये बातें यर्दन के पार बैतनिया में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, मेरे पीछे एक पुरुष आता है जो मुझसे आगे हो गया है, क्योंकि वह मुझसे पहले था और मैं भी उसे नहीं पहचानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इसराइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह कहते हुए साक्षी दी, मैंने आकाश से आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा है और वह उस पर ठहरा, और मैं तो उसको नहीं पहचानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला यही है। और मैंने देखा और साक्षी दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। फिर दूसरे दिन यूहन्ना अपने चेलों में से दो के साथ खड़ा हुआ था, और उसने यीशु को जाते हुए देखकर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। और दोनों चेले उसकी बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहां रहता है? उसने उनसे कहा, आओ तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर देखा कि वह कहां रहता है, और उस दिन उसके साथ ठहरे, क्योंकि संध्या के लगभग 4 बज चुके थे। जिन्होंने यूहन्ना की बात सुनी और यीशु के पीछे हो लिए, उन दोनों में से एक शमाउन पत्रस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमाउन को पाकर उससे कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रीस्ट मिल गया है, और वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमाउन है, तू कैफा अर्थात पत्रस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाने का निश्चय किया और फिलिपुस को पाकर उससे कहा, मेरे पीछे चला आ। फिलिपुस तो अंद्रियास और पत्रस के नगर बैतसैदा का था। फिलिपुस ने नतनियेल को पाकर उससे कहा, जिसके विषय में मूसा ने व्यवस्था में और नबियों ने भी लिखा है, वह हमें मिल गया है, अर्थात यूसुफ का पुत्र नासरत का यीशु। और नतनेल ने उससे कहा, भला नासरत से भी कोई उत्तम वस्तु निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, आकर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो वास्तव में एक इसराइली जिसमें कोई कपट नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के वृक्ष तले था, मैंने तुझे देखा। नतनेल ने उसे उत्तर दिया, रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इसराइल का राजा है। यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के वृक्ष तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इनसे भी बड़े बड़े काम देखेगा। उसने फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र पर नीचे आते और ऊपर चढ़ते देखोगे। दूसरा अध्याय। तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की माता वहां थी। यीशु तथा उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। तब यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे, जिनमें लगभग 70 या 80 लीटर समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो, और उन्होंने उनको मुहांमुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब कुछ निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तब भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, प्रत्येक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर तृप्त हो जाते हैं तब घटिया। तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। गलील के काना में यीशु ने अपने अद्भुत चिन्हों का आरंभ इस प्रकार करके अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके पश्चात यीशु, उसकी माता, उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम गए और वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम गया और मंदिर में उसने बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का एक कोड़ा बनाया और उन सब को भेड़ों और बैलों के साथ मंदिर से बाहर निकाल दिया और सर्राफों के सिक्के बिखेर दिए और उनकी मेजों को उलट दिया। और उसने कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इसलिए यहूदियों ने यीशु को उत्तर दिया, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे, क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु वह तो अपनी देह के मंदिर के विषय में कह रहा था। इसलिए जब वह मृतकों में से जिलाया गया तो उसके चेलों को स्मरण हुआ कि उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र तथा उस वचन पर जो यीशु ने कहा था विश्वास किया। जब वह फसह के पर्व के समय यरूशलेम में था तो बहुत लोगों ने उन चिन्हों को जिन्हें वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु जहां तक यीशु का संबंध था, उसने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। अतः उसे इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि कोई व्यक्ति किसी मनुष्य के संबंध में साक्षी दे, क्योंकि वह स्वयं जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। 3 अध्याय। फरीसियों में से निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का एक अधिकारी था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ न हो। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नया जन्म न ले वह परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आश्चर्य न कर कि मैंने तुझसे कहा अवश्य है कि तू नया जन्म ले। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है, परंतु यह नहीं जानता कि वह किधर से आती और किधर को जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यह सब कैसे हो सकता है? यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, क्या तू इसराइलियों का गुरु नहीं, फिर भी इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जो हम जानते हैं वही कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसी की साक्षी देते हैं, और तुम हमारी साक्षी ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं तो तुम विश्वास नहीं करते। यदि मैं तुमको स्वर्ग की बातें बताऊं तो कैसे विश्वास करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। और जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए, कि जो कोई विश्वास करे वह उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दोष यह है कि ज्योति जगत में आ चुकी है, परंतु मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके कार्य बुरे थे। क्योंकि प्रत्येक जो बुराई करता है ज्योति से बैर रखता है, और ज्योति के पास नहीं आता कि कहीं उसके कार्य प्रकट न हो जाएं, परंतु वह जो सत्य पर चलता है ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसके कार्य परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। इन बातों के पश्चात यीशु और उसके चेले यहूदिया प्रदेश में आए, और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देता था। यूहन्ना भी शालिम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां पानी अधिक था और लोग बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस समय तक बंदी गृह में नहीं डाला गया था। इसलिए यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्ध करने की रीति के विषय पर विवाद छिड़ गया, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, रब्बी, वह जो यर्दन के उस पार तेरे साथ था और जिसकी तूने साक्षी दी है, देख, वह बपतिस्मा दे रहा है और सब लोग उसके पास आ रहे हैं। यूहन्ना ने उत्तर देते हुए कहा, जब तक किसी मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तुम स्वयं मेरी साक्षी देते हो कि मैंने कहा था, मैं मसीह नहीं हूं, परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। दुल्हा वही है जिसकी दुल्हन है, परंतु दुल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हे की आवाज सुनकर आनंद विभोर हो उठता है, और इसी प्रकार मेरा यह आनंद पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वह सबसे बढ़कर है, जो पृथ्वी से है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें करता है। वह जो स्वर्ग से आता है सबसे बढ़कर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है वह उसी की साक्षी देता है, फिर भी कोई मनुष्य उसकी साक्षी ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी साक्षी ग्रहण कर ली है उसने इस बात पर मुहर लगा दी है कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें करता है, क्योंकि वह बिना किसी नाप के उसे आत्मा देता है। पिता पुत्र से प्रेम करता है और उसने उसी के हाथ सब कुछ सौंप दिया है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु वह जो पुत्र की नहीं मानता जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का प्रकोप उस पर बना रहता है। चौथा अध्याय। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उनको बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा दे रहे थे, तो वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसे सामरिया में से होकर जाना पड़ा। अतः वह सामरिया के सुखार नामक एक नगर में आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहां था। अतः यात्रा से थककर यीशु कुएं के पास यों ही बैठा था। उस समय लगभग 12 बजे थे। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले भोजन मोल लेने के लिए नगर में गए हुए थे। इसलिए उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, यह कैसी बात है कि तू यहूदी होते हुए भी मुझसे पानी मांगता है? मैं तो सामरी स्त्री हूं। यहूदी तो सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, तेरे पास जल भरने को कुछ नहीं है और कुआं गहरा है, तो वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बढ़कर है, जिसने हमें यह कुआं दिया और जिसमें से उसने स्वयं, उसके पुत्रों और उसके पशुओं ने भी पिया? यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, प्रत्येक जो इस जल में से पीता है वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, अनंत काल तक प्यासा न होगा। परंतु वह जल जो मैं उसे दूंगा, उसमें अनंत जीवन के लिए उमंडने वाला जल का सोता बन जाएगा। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, यह जल मुझे भी दे, जिससे कि मुझे फिर प्यास न लगे और न ही जल भरने यहां तक आना पड़े। यीशु ने उससे कहा, जा, अपने पति को बुलाकर यहां आ। स्त्री ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक कहा, मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं और अब जो तेरे पास है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। उस स्त्री ने उससे कहा, महोदय, मुझे लगता है कि तू नबी है। हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की और तुम कहते हो कि यरूशलेम ही वह स्थान है जहां मनुष्यों को आराधना करनी है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है जब तुम न तो इस पर्वत पर और न यरूशलेम में ही पिता की आराधना करोगे। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे नहीं जानते, हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। परंतु वह समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रीस्ट कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में उसके चेले आ गए और उसे एक स्त्री के साथ बातें करते देखकर अचंभे में पड़ गए। फिर भी किसी ने यह नहीं पूछा कि तू क्या चाहता है अथवा तू इस स्त्री से क्यों बातें कर रहा है। उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और नगर में जाकर लोगों से कहा, आओ, एक मनुष्य को देखो जिसने वह सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं? वे नगर से निकलकर उसके पास जाने लगे। इसी समय उसके चेलों ने उससे निवेदन किया, रब्बी कुछ खा ले। परंतु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरे पास खाने को ऐसा भोजन है जिसके विषय में तुम नहीं जानते हो। चेले आपस में कहने लगे, कहीं कोई उसके लिए भोजन तो नहीं लाया? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसका कार्य पूरा करूं। क्या तुम यह नहीं कहते, अब कटनी के 4 महीने ही रह गए हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाओ और खेतों पर दृष्टि करो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाले को अब मजदूरी मिल रही है और वह अनंत जीवन के लिए फल एकत्र कर रहा है, कि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद मना सकें। क्योंकि परंतु मुझसे करता है, क्योंकि मैं इस बात की साक्षी देता हूं कि उसके कार्य बुरे हैं। तुम स्वयं ही पर्व में जाओ, मैं इस पर्व में अभी नहीं जाता, क्योंकि मेरा समय अब तक पूर्ण रूप से नहीं आया। उनसे ये बातें कहने के पश्चात वह गलील में ठहर गया। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए, तब वह स्वयं भी गया, सबके सामने नहीं, परंतु मानो गुप्त रीति से। इसलिए यहूदी उसे पर्व में खोज रहे थे और कह रहे थे, वह कहां है? और भीड़ उसके संबंध में बुड़बुड़ाने लगी। कुछ लोग कह रहे थे, वह भला मनुष्य है। अन्य कह रहे थे, नहीं, वह लोगों को भरमाता है। फिर भी यहूदियों के भय के कारण कोई उसके विषय में खुलकर नहीं बोल रहा था। परंतु जब पर्व के आधे दिन बीत गए, तो यीशु मंदिर में गया और उपदेश देने लगा। इसलिए यहूदी चकित होकर कहने लगे, यह मनुष्य बिना शिक्षा पाए कैसे ज्ञानी बन गया? तब यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, यह उपदेश मेरा नहीं, परंतु उसका है जिसने मुझे भेजा। यदि कोई मनुष्य उसकी इच्छा पूरी करने को तैयार है, तो वह इस शिक्षा के विषय जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। जो अपनी ओर से कहता है, वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है, वही सच्चा है और उसमें कोई अधर्म नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी, और फिर भी तुम में से कोई व्यवस्था का पालन नहीं करता? तुम क्यों मुझे मार डालने की खोज में हो? भीड़ ने उत्तर दिया, तुझमें दुष्टात्मा है, कौन तुझे मार डालने की खोज में है? यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, मैंने एक कार्य किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतना की विधि दी है, इसलिए नहीं कि वह मूसा की है, परंतु पूर्वजों की ओर से, और तुम सब्त के दिन मनुष्य का खतना करते हो। यदि सब्त के दिन मनुष्य का खतना इसलिए किया जाता है कि मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन न हो, तो इसलिए कि मैंने सब्त के दिन एक मनुष्य को सर्वांग चंगा कर दिया, तुम मुझसे क्रोधित हो? मुंह देखा न्याय मत करो, परंतु धार्मिकता से न्याय करो। अतः यरूशलेम के कुछ लोग कहने लगे, क्या यह वही मनुष्य नहीं जिसे वे मार डालने का प्रयत्न कर रहे हैं? पर देखो, वह तो खुल्लम खुल्ला बातें कर रहा है, और वे उससे कुछ नहीं कह रहे हैं। कहीं अधिकारियों को भी तो यह नहीं मालूम हो गया कि यही मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह मनुष्य कहां का है। परंतु जब मसीह आएगा, तो कोई भी ना जानेगा कि वह कहां का है। तब यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां से आया हूं। मैं अपने आप से नहीं आया, परंतु जिसने मुझे भेजा वह सच्चा है, जिसे तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। अतः वे उसे पकड़ने का प्रयत्न करने लगे, फिर भी किसी ने उस पर हाथ न लगाया, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। परंतु भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, जब मसीह आएगा तो क्या वह इस मनुष्य की अपेक्षा और अधिक चिन्ह दिखाएगा? फरीसियों ने भीड़ को उसके विषय में कानाफूसी करते सुना और महायाजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने के लिए सिपाहियों को भेजा। अतः यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब मैं उसके पास जाता हूं जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे ढूंढोगे पर नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। अतः यहूदियों ने आपस में कहा, यह मनुष्य कहां जाना चाहता है कि हम उसे नहीं पाएंगे? क्या वह उनके पास जाना चाहता है जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं और यूनानियों को भी शिक्षा देगा? यह कैसी बात है जो उसने कही, तुम मुझे ढूंढोगे और न पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते? पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। परंतु यह उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, इसलिए कि पवित्र आत्मा अब तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा में नहीं पहुंचा था। तब भीड़ में से कुछ ने जब इन वचनों को सुना तो कहा, यह निश्चय वह नहीं है। दूसरे कहने लगे, यही मसीह है। फिर कुछ अन्य लोग कहने लगे, क्यों, क्या मसीह निश्चय गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र ने यह नहीं कहा है कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? इसलिए उसके कारण भीड़ में फूट पड़ गई। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न लगाया। तब सिपाही लौटकर महायाजकों और फरीसियों के पास आए। उन्होंने उनसे पूछा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, आज तक ऐसी बातें किसी ने कभी नहीं कही जैसी वह कहता है। तब फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, कहीं तुम भी तो नहीं भरमाए गए हो? क्या अधिकारियों या फरीसियों में से उस पर किसी ने विश्वास किया है? परंतु यह भीड़ जो व्यवस्था नहीं जानती शापित है। निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी मनुष्य को जब तक पहले उसकी सुन न ले और यह न जान ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर देते हुए कहा, कहीं तू भी तो गलील का नहीं? ढूंढ और देख, गलील से कोई नबी प्रकट नहीं होने का। और सब अपने घर को चले गए। आठवां अध्याय। परंतु यीशु जैतून पर्वत पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आने लगे और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब फरीसी और शास्त्री एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा किया। उन्होंने उससे कहा, गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में तो मूसा ने हमें ऐसी स्त्री को पथराव करने की आज्ञा दी है, तू इस विषय में क्या कहता है? वे उसे परखने के लिए ऐसा कह रहे थे, जिससे कि उस पर दोष लगाने के लिए कोई आधार मिले। परंतु यीशु झुककर अपनी उंगली से भूमि पर लिखने लगा। परंतु जब वे बार बार उससे पूछते रहे, तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहले उसे पत्थर मारे। वह फिर झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब उन्होंने यह सुना तो पहले वृद्ध तब एक एक करके सब जाने लगे, और वह अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। तब यीशु ने सीधे खड़े होकर उससे कहा, हे स्त्री, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, किसी ने भी नहीं प्रभु। तब यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा अब से फिर पाप न करना। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी साक्षी स्वयं दे रहा है, तेरी साक्षी सच्ची नहीं। यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, यद्यपि अपनी साक्षी मैं स्वयं देता हूं, मेरी साक्षी सत्य है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं, पर तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। तुम लोग शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। यदि मैं न्याय भी करूं तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं वरन इसमें मैं हूं और मेरा भेजने वाला भी है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो मनुष्यों की साक्षी सत्य होती है, एक मैं हूं जो अपनी साक्षी स्वयं देता हूं, और दूसरा है पिता जिसने मुझे भेजा और मेरे विषय में साक्षी देता है। तब वे उससे कहने लगे, तेरा पिता कहां है? यीशु ने उत्तर दिया, तुम न तो मुझे जानते हो और न मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये वचन उसने मंदिर में शिक्षा देते समय कोषागार में कहे, और किसी ने उसे न पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदी कहने लगे, कहीं वह अपने आप को मार तो नहीं डालेगा? वह कहता है, जहां मैं जा रहा हूं तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि जब तक तुम विश्वास न करो कि मैं वही हूं, तुम अपने पापों में मरोगे। वे उससे कहने लगे, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही जो मैं तुमसे आरंभ ही से कहता आ रहा हूं। मुझे तुम्हारे संबंध में बहुत सी बातें कहनी हैं और न्याय करना है, परंतु जिसने मुझे भेजा वह सच्चा है, और वे बातें जो मैंने उससे सुनी वे ही मैं जगत से कहता हूं। वे यह नहीं समझे कि वह उनसे पिता के विषय में कह रहा था। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचा उठाओगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूं, और मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया है मैं ये बातें कहता हूं। जिसने मुझे भेजा वह मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सदा वे ही कार्य करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। जब उसने ये बातें कही तो बहुतों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम इब्राहिम के वंशज हैं और अब तक किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। दास सर्वदा घर में नहीं रहता, पुत्र सर्वदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंशज हो, फिर भी मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता। मैं वे ही बातें कहता हूं जिन्हें अपने पिता के यहां देखा है, इसी तरह तुम भी वे ही कार्य करते हो जिन्हें तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उत्तर देते हुए उससे कहा, हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान हो तो इब्राहिम के समान कार्य करो, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें उस सत्य को बताया जो मैंने परमेश्वर से सुना। ऐसा तो इब्राहिम ने नहीं किया, तुम अपने पिता के कार्यों को कर रहे हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकलकर आया हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। जो मैं कह रहा हूं उसे तुम क्यों नहीं समझते? यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरा वचन नहीं सुन सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब भी वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। मैं सच बोलता हूं, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। तुम इसलिए उन्हें नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर के नहीं हो। यहूदियों ने उत्तर देते हुए उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझमें दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझमें दुष्ट आत्मा नहीं है, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वह कभी मृत्यु को न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हम जान गए कि तुझमें दुष्ट आत्मा है। इब्राहिम मर गया और नबी भी, पर तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वह कभी मृत्यु का स्वाद न चखेगा। निश्चय तू हमारे पिता इब्राहिम से बड़ा नहीं जो मर गया, नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या समझता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को प्रतिष्ठा दूं तो मेरी प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं। मुझे प्रतिष्ठा देने वाला मेरा पिता है, जिसके विषय में तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारे समान झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूं और उसके वचन का पालन करता हूं। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से आनंदित हुआ, उसने देखा भी और मगन हुआ। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू अभी 50 वर्ष का भी नहीं, क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। तब उन्होंने उसे पथराव करने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से बाहर निकल गया। 9वां अध्याय। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने यह कहते हुए उससे पूछा, रब्बी किसने पाप किया, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने कि यह अंधा जन्मा? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया न ही इसके माता पिता ने, पर यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के कार्य इसमें प्रकट हों। अवश्य है कि जिसने मुझे भेजा है उसके कार्य हम दिन ही दिन में करें। रात आने वाली है जब कोई मनुष्य कार्य नहीं कर सकेगा। जब तक मैं हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। जब वह यह कह चुका तो उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, तब उस मिट्टी को अंधे की आंखों पर लगाया और उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ है भेजा हुआ। अतः उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं है जो बैठा भीख मांगा करता था? दूसरे कहने लगे, यह वही है। अन्य लोगों ने कहा, नहीं, परंतु यह उसके समान है। वह कहता रहा, मैं वही हूं। इसलिए वे उससे पूछने लगे, तब तेरी आंखें कैसे खुल गईं? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाई और मुझसे कहा, शिलोह को जा और धो ले। अतः मैंने जाकर धोया और मैं देखने लगा। और उन्होंने उससे कहा, वह कहां है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। वे उसे, जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास लाए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थीं, वह सब्त का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि तू किस प्रकार देखने लगा? और उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मैंने धोया और अब मैं देखता हूं। इसलिए फरीसियों में से कुछ कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता। परंतु दूसरे कहने लगे, एक पापी मनुष्य ऐसे चिन्हों को कैसे दिखा सकता है? और उनमें फूट पड़ गई। इसलिए उन्होंने उस अंधे मनुष्य से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली हैं, तो उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह नबी है। इसलिए यहूदियों ने उसकी इस बात का विश्वास नहीं किया कि वह अंधा था और अब देखने लगा, जब तक कि उन्होंने उस दृष्टि पाने वाले मनुष्य के माता पिता को बुलाकर यह न पूछ लिया, क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? तो अब वह कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हम जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और यह कि वह अंधा जन्मा था, परंतु अब वह कैसे देखने लगा हम नहीं जानते, या किसने उसकी आंखें खोली हमें नहीं मालूम। उसी से पूछो, वह सयाना है और वह अपने बारे में स्वयं बता देगा। उसके माता पिता ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी पहले ही एकमत हो चुके थे कि यदि कोई उसे मसीह मानेगा तो आराधनालय से निकाल दिया जाएगा। इस कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सयाना है, उसी से पूछो। अतः उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाया और उससे कहा, परमेश्वर की महिमा कर, हम जानते हैं कि यह मनुष्य पापी है। तब उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, मैं तो एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। इसलिए उन्होंने उससे पूछा, उसने तेरे साथ क्या किया? तेरी आंखें उसने कैसे खोली? उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका और तुमने नहीं सुना, फिर दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? और उन्होंने उसको बुरा भला कहते हुए कहा, तू ही उसका चेला है, परंतु हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य के संबंध में हम नहीं जानते कि कहां का है। उस मनुष्य ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, अरे, यह तो बड़ी विचित्र बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहां का है, फिर भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भय मानने वाला हो और उसकी इच्छा पूरी करता हो तो वह उसकी सुनता है। आदिकाल से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे व्यक्ति की आंखें खोली हों। यदि यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो वह कुछ कर ही नहीं सकता। उन्होंने उत्तर देते हुए उससे कहा, तू तो पापों में ही जन्मा है और क्या तू हमें सिखाने आया है? और उन्होंने उसे निकालकर बाहर कर दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे निकालकर बाहर कर दिया है, तो उससे मिलकर उसने कहा, क्या तू मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर देते हुए कहा, वह कौन है प्रभु कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और वही है जो अभी
तेरे साथ बातें कर रहा है। और उसने कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं। और उसने उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस संसार में न्याय के लिए आया हूं कि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। फरीसियों में से कुछ उसके साथ थे। यह बातें सुनकर उन्होंने उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो तुम में कोई पाप ना होता। अब तुम कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। 10वां अध्याय। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह जो द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से प्रवेश करता वह भेड़ों का चरवाहा है। द्वारपाल उनके लिए द्वार खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर पुकारता है और उन्हें बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल लेता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। और वे किसी दूसरे के पीछे कभी नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे दूसरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे नहीं समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कह रहा था। इसलिए यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वह जो मजदूर है पर चरवाहा नहीं, और न ही भेड़ों का मालिक है, भेड़िये को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया झपटकर उन्हें तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है क्योंकि वह मजदूर है और उसे भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। वैसे ही पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है, और वे मेरी आवाज सुनेंगी, तब उनका एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, परंतु मैं उसे अपने आप ही देता हूं। मुझे उसे देने का अधिकार है और फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मैंने अपने पिता से पाई है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी, और उनमें से बहुत लोग कहने लगे, उसमें दुष्टात्मा है और वह पागल है, तुम उसकी क्यों सुनते हो? अन्य लोग कह रहे थे, ये बातें उसकी नहीं जिसमें दुष्टात्मा हो। क्या दुष्टात्मा अंधे की आंखें खोल सकती हैं? उस समय यरूशलेम में समर्पण पर्व मनाया गया। जाड़े की ऋतु थी और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसके चारों ओर इकट्ठे होकर उससे कहा, तू हमें कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे विषय में साक्षी देते हैं, परंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश न होंगी और उन्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे महान है और कोई भी उन्हें पिता के हाथों से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उसे पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने पिता की ओर से बहुत से अच्छे कार्य किए, उनमें से किसके लिए तुम मुझे पथराव कर रहे हो? यहूदियों ने उसे उत्तर दिया, हम अच्छे कार्य के लिए तुझे पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए भी कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? जबकि उसने उन्हें ईश्वर कहा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र का खंडन नहीं किया जा सकता, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर संसार में भेजा, क्या तुम उसके विषय में कहते हो तू निंदा करता है? क्योंकि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं उन्हें करता हूं तो चाहे तुम मेरा विश्वास न करो, उन कार्यों के कारण तो विश्वास करो कि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। अतः उन्होंने उसे पकड़ने का फिर प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से बचकर निकल गया।